हरे कृष्ण। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे बीच में है हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का जन्म हो गया 1961 में, और इस्कॉन में 1984 में ज्वाइन हो गए, और 1985 में वृंदावन मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन हो गए। और उनको पहला हरिनाम दीक्षा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा हुआ है, और 2013 में वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का अपियरेंस 2013 में उनको संन्यास दीक्षा मिला है। और वैष्णव भजन भी बहुत सुंदर तरीके से महाराज गाते हैं, और साथ साथ में वैष्णव भजन का अर्थ भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। और महाराज हिंदी, इंग्लिश, ओडिया भाषा में सरल तरीके से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में बहुत माहिर है। और वृंदावन के रीजनल काउंसिल में इजोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने वहां पर उनको मेंबर बना दिए, और करंटली महाराज जी एनसीएल के रीजनल सेक्रेटरी है, जो वृंदावन, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के हैं। और महाराज सारे जगत में, साउथ अफ्रीका में, हर जगह प्रचार करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, तो महाराज का आज हमें संग मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में महाराज अपना संग प्रदान करने वाले हैं। तो आइए हम हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का इस्कॉन पुणे में स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। राधे श्याम प्रभु दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सग्रजातम सहगणम रघुनाथम निधम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर सुंदर के सेवक सेविका वृंद के विशेष कृपा से आज आप लोग के दर्शन और संग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यद्यपि आई एम नॉट फुली क्वालिफाइड फॉर इट, बट राधे श्याम प्रभु स्पेशल मर्सी। तो आज हम श्री भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के गर्भस्तुति के प्रथम श्लोक लेंगे और काल कोई एक और एक श्लोक लेंगे, क्योंकि कृष्ण जन्म लीला के प्रसंग बोलने के लिए हम अधिकारी नहीं हैं, तो जो देवताओं के अनुयायी जो लोग बोले थोड़ा उसको प्रयास करेंगे बोलने के लिए। तो क्योंकि मैं श्री वृंदावन धाम से बोल रहा हूं, तो हमारे इस्कन वृंदावन के अधिदेव श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री निताय गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी की श्री चरण में विशेष प्रणाम और करके उनके कृपा आशीर्वाद को संबल बना करके आप लोग के सामने उनके लीला कथा का चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। सो टेंथ कैंटो चैप्टर टू टेक्स्ट 26। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसात्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसात्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। शब्दार्थ सत्यव्रतम्, भगवान जो आपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते। सत्य परम, परम सत्य, जैसा कि भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। त्रि सत्यम, वे इस जगत की सृष्टि पालन तथा इसके संहार के बाद भी परम सत्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। सत्यस्य परम सत्य कृष्ण से उद्भूत सारे सत्यों के, जोनिम कारण, निहितम प्रविष्ट च तथा सत्य इस जगत को उत्पन्न करने वाले कारणों, पंच तत्व खिति जल पावक गगन समीरा, सत्यस्य सत्य माने जाने वाले का, सत्यम भगवान जो आदि सत्य है, ऋत सत्य नेत्रम आछे लगने वाले सत्य के उद्गम सुनेत्रम, सत्यात्मकम भगवान से संबंध हर वस्तु सत्य है, सचिदानंद उनका शरीर सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है और उनका आनंद सत्य है। त्वाम तुम्हारी भगवान, हे भगवान, शरणम शरण में, प्रपन्नाहा आपके संरक्षण में हम सभी। यहाँ कुछ विशेष फुटनोट दिया गया, विशेष द्रष्टव्य, भगवान का व्रत है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवद गीता 4:7। इसी व्रत को निभाने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। अनदर फुटनोट, भगवान सारी वस्तुओं में, यहां तक कि परमाणु के भीतर भी हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, ये ब्रह्म संहिता का ऐसे, इसलिए भी वे अंतर्जामी कहलाते हैं। अनुवाद, देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि पालन तथा संहार, जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसलिए आप अंतर्जामी कहलाते हैं। आप सबों पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हरेक पर लागू होता है। आप आदि सत्य है, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तात्पर्य, देवता या भक्तगण भली भांति जानते हैं कि चाहे यह भौतिक जगत हो या वैकुंठ हो, असली वस्तु तो भगवान ही है। इसलिए भागवत का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि से होता है। वासुदेव कृष्ण ही परम सत्य है, परम सत्य तक परम विधि द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जैसा कि परम सत्य ने घोषित किया है, भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यास्मि तत्त्वतः, भगवद गीता 18:55। परम सत्य को समझने का एकमात्र उपाय है भक्ति, इसलिए देवतागण अपनी रक्षा के लिए परम सत्य के ही शरण में आते हैं, सापेक्ष सत्य की नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु परम सत्य कृष्ण ने भगवद गीता में 7:23 में कहते हैं, अंतवंतु फलम तेसाम तद भवती अल्पमेधसाम। अल्पज्ञ लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा सीमित समय के लिए लाभदायक हो सकती है, किंतु परिणाम नाशवान होता है। यह संसार नश्वर है और देवता भी नश्वर है। देवताओं से प्राप्त होने वाली वर भी नश्वर होते हैं, जबकि जीव शाश्वत है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। इसलिए हर जीव को नश्वर सुख नहीं अपितु शाश्वत सुख की खोज करनी चाहिए। सत्यम परम धीमहि सूचित करता है कि मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, सापेक्ष सत्य की नहीं। भगवान नृसिंहदेव की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहम नार्तस्य चागद मुदन्वति मज्जतो नो। सामान्यतया यह समझा जाता है कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता होते हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है। असली रक्षक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तप्तस्य तत् प्रतिविधीर्यं यहांजसेष्टं सिष्टस् तान् विद्मो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। यदि किसी बालक की उपेक्षा भगवान द्वारा होती है, वह अपने माता पिता के होते हुए भी कष्ट तिरस्कार कर देते हैं। रुक जाता है कष्ट तो ये व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए देवताओं ने जानबूझकर कहा, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, हे प्रभु आप ही असली रक्षा कर सकते हैं, अतएव हम आपके शरण में आए हैं। भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और ये आगे कहते हैं, सकृतेव प्रपन्नो प्रपन्नोयम तव अस्मि इति जाचते, अभयम सर्वदा तस्मे ददामि एतद् व्रतं मम। यदि कोई निष्ठापूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है कि हे प्रभु आज से मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूं, यह मेरा व्रत है। रामायण युद्धकांड में है, देवताओं ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि कंस तथा उसके सहयोगी द्वारा सताए गए सारे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी भक्त देवकी के गर्भ में अप्रकट हो चुके थे। इस तरह भगवान सत्यव्रत की भूमिका वादा करते हैं। भगवान द्वारा की जाने वाली रक्षा की तुलना देवताओं द्वारा दी जाने वाली रक्षा से नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि रावण शिव जी का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र जी उसे मारने गए तो शिव जी उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। ब्रह्मा जी तथा शिव नारद जैसे महान ऋषियों तथा अनेक अन्य देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य होकर आए, वे भगवान की स्तुति ऐसे चुने चुने श्लोक से करने लगे जो भक्तों को प्रिय है और इच्छाओं को पूरे करने वाले होते हैं। प्रारंभिक शब्दों में उन्होंने कहा है कि भगवान अपने व्रत के पक्के हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्णा पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए ही इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, यही उनका व्रत है। देवता समझ गए थे कि भगवान अपने इस व्रत को पूरा करने के लिए ही देवकी के गर्भ में वास कर चुके हैं। वे परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना ध्येय पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं और उन्होंने उन्हें सत्यं परम कहकर संबोधित किया। हर व्यक्ति सत्य की खोज में रहता है, यही जीवन की दार्शनिक शैली है। देवता यह जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण है, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परम सत्य है, सापेक्ष सत्य काल की तीनों अवस्थाओं में सत्य नहीं है। काल को भूत वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित किया जाता है। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य सब में सत्य है। भौतिक जगत में हर वस्तु का नियंत्रण परम काल द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में होता है। सृष्टि के पहले भी कृष्ण विद्यमान थे और सृष्टि के रचना हो जाने पर हर वस्तु कृष्ण पर टिकी है और इस सृष्टि के नष्ट हो जाने पर कृष्ण बने रहेंगे, अतः वे समस्त परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि इस जगत में कोई सत्य है तो वह परम सत्य कृष्ण से उद्भूत है। यदि इस जगत में कोई ऐश्वर्य है तो इस ऐश्वर्य का कारण कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई जस है तो उसके कारण सब कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई पराक्रम है तो उसका कारण कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई बुद्धि तथा विद्या है तो उसका कारण कृष्ण है। अतः कृष्ण समस्त सापेक्ष सत्यों के उद्यम है, उद्गम है। इसीलिए भक्तगण ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, कि हम आदि पुरुष परम सत्य गोविंद को पूजा करते हैं। सर्वत्र सारे कार्य ज्ञान बल क्रिया इन तीन सिद्धांतों के रूप में संपन्न होते हैं। यदि हर क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान पूर्ण बल तथा पूर्ण क्रिया नहीं होती तो कोई प्रयास कभी भी सफल नहीं होता। अतः यदि कोई व्यक्ति हर काम में सफलता चाहता है उसे इन तीन सिद्धांतों का आधार मिलना चाहिए। वेदों में श्वेत सतर उपनिषद में भगवान संबंधी निम्नलिखित कथन पाया जाता है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रीयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वे जो भी करवाना चाहते हैं वह भौतिक प्रकृति के नियंत्रण द्वारा भलीभांति संपन्न हो जाता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, इस तरह जो लोग भगवान की सेवा में लगे हैं वे जीवन संघर्ष करने निमित्त नहीं होते। इस समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में जो 10,000 से हैं, अन्य चिंतन्तु मां ये जन परिपासते तेषां नित्य भुजुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं और मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं उन्हें मैं वह देता हूँ जो उनके पास नहीं है तथा जो उनके पास है उनकी सुरक्षा करता हूँ। भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, वे कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो भगवान हर वस्तु बनाए रखते हैं और पूर्ति करते हैं। जिन्होंने वचन दिया है कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र तो निर्भीक रह कर घोषित कर दे कि मेरा भक्त का कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए सभी दृष्टियों से सभी परिस्थितियों में यदि कोई पूरी तरह भगवान की शरण में चला जाता है तो फिर उसके जीवन संघर्ष करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में श्रीपाद माधवाचार्य की टीका सार्थक है, जिसमें तंत्र भागवत से उदाहरण दिए गए हैं। स्वच्छंद उत्तम ब्रूयात आनंदन तिथि वई बदेत जयति ज्ञानम समुदिष्ट पूर्णानंद ऋषिस्ततः अत्रताच्च तदा दानात् सत्यात्य चुच्यते विभु। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सत्यस्य जोनिम शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कृष्ण अवतारी अर्थात सारे अवतारों के उद्गम है, सारे अवतार परम सत्य के परम सत्य है, फिर भी भगवान कृष्ण ही समस्त अवतारों के उद्गम है। दीपार्चरे वही दशांतरम अभ्युपित्य दीपायते। संहिता के अनुसार मान लीजिए कि अनेक दीपक है जो समान शक्ति वाले हैं, फिर भी पहला दूसरा तीसरा इत्यादि इत्यादि दीपक होते हैं। इसी तरह अवतार अनेक है जिनकी तुलना दीपक से की जाती है, लेकिन पहला दीपक आदि भगवान कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए पूजा करनी चाहिए। किंतु यह तर्क किया जा सकता है कि भगवान देवकी के गर्भ के भीतर थे, अतः वे भी भौतिक देह में प्रकट होने वाले थे, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाए? किसी सामान्य जीव तथा भगवान में अंतर क्यों करे? इन प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दिया जाएगा। तो ये बहुत दार्शनिक शिक्षाएं इस भागवत के कृष्ण अवतरण के पहले श्री सुखदेव गोस्वामी अवतार लीला का अव्यवहित पूर्व अवस्था का वर्णन करते हुए किस प्रकार उन्होंने वर्णन किए, धरती में भार बढ़ गया था और पृथ्वी देवी देव सभा में गई भगवान के पास गई, उसके बाद में वर्णन किए जैसे कंसासुर का उत्पीड़न पूरा जदुवन समय मथुरा में किस प्रकार उन्होंने अत्याचार कर रहा था, और वसुदेव की शादी हुआ कंस के छोटी बहन से देवकी माँ से, और विदाई उत्सव पर आकाशवाणी सुन करके कंस का पुनः अत्याचार, देवकी को हत्या करने के लिए प्रयास, किसी प्रकार से बचे और एक एक करके उनके जन्मजात शिशु को हत्या करना, अंततः देवकी माँ के अष्टम गर्भ के समय आ चुका है। क्योंकि भगवान ने देवताओं को पहले ही वचन दे चुके थे कि मैं आऊंगा, अष्टम गर्भ कौन से कोई नोटिस देवताओं ने दे दिए थे कि आठवां गर्भ तेरा काल होगा, तो ये सत्य वचन सब है, भगवान कह दिए मतलब भगवान सत्य है, वो सत्य होगा, तो इसलिए कंस क्या उसके बाप पूछ भी नहीं कर सकते, वो तो अष्टम गर्भ हुआ। अब हुआ जब भगवान देवकी माँ के गर्भ में आ गए, तो इसी बात को जान करके हम लोग जान नहीं पाते, देवताओं तो जान गए, अदृश्य रूप में कंस के मथुरा नगरी में उनके कारागार के जो जो कुठरी में वसुदेव देवकी थे उनकी जेल को, उनको कोई ताला फला सिक्योरिटी का पास पास जरूरत नहीं, वो तो सब अनसीन अदृश्य रूप में आए, आ करके बोलते हैं ब्रह्मा शंकर और अन्य अन्य देवता ऋषियां नारद जी आदि सभी आए थे, पूरे ग्रुप अपना अपने गाड़ी पार्किंग कहाँ किए होंगे, तो किए होंगे, उनको कोई समस्या नहीं है, उनका कोई ड्राइवर जरूरत नहीं, पेट्रोल जरूरत नहीं, पार्किंग का समस्या नहीं, ट्रैफिक का समस्या नहीं, वो लोग इतने सारे लोग आकर के एक ही रूम में एडजस्ट हो गए, सब घुस गए, अब घुस करके अब गर्भस्तुति, बस देवकी देवकी माँ के गर्भ में भगवान है, हम लोग तो गर्भस्तुति किया प्रकट होने के बाद में ही डिलीवरी वार्ड में स्तुति करने नहीं जाते, लेकिन ये गर्भ में है कोई नहीं देख पाते, लेकिन देवताओं तो जानते हैं कि हमारे प्रभु प्रभु के प्रभु आदि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, सुप्रीम बस आ चुके हैं, इस बार अब देव की माता को मां बनाएंगे, वसुदेव जी को पिता बनाएंगे, आ चुके हैं, इसलिए उनके शरण में आए हैं, और आकर के गर्भस्थित श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं, समुच्चय देवता जिसमें ब्रह्मा शिव नेता सदृश है, इन समुच्चय देवता समुच्चय ऋषि वर्ग भी थे, नारद आदि ऋषि वर्ग देवर्षि गण देवता गण, वो प्रभुपाद जी लगते हैं बहुत चुने चुने श्लोकों में, क्योंकि सुप्रीम बस के सामने जाते हैं। आप कभी ऑर्डिनरी कोई ऑर्डिनरी पर्सन कोई मंत्री महल में जाएगा, कितने उनका ड्रेस चेक करेगा, टोन चेक करेगा, गाड़ी चेक करेगा, कोई सारे प्रॉम्प्टिंग कितने सारे प्रैक्टिस करेगा, और कोई प्राइम मिनिस्टर क्या कोई ऐसे खूब बड़े आदमी से अगर अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, कितने रियल सेल कितने क्या क्या करना पड़ा, कैसे बोलूं। अरे ये तो सब छोटी मोटी कुछ नहीं है, जब साक्षात परम ब्रह्म परम पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मादि के चक्कर, तो खिरद साई विष्णु खिरदनाथ भी उनको दर्शन नहीं दिए, फोन करके बोले ब्रह्मा से बात किए, तो वो उनके बस के बस के बस के बस सुप्रीम बस उनको प्रार्थना करने जाएंगे, ब्रह्मा जी अगर कितने प्रैक्टिस किए होंगे, कितने प्रिपरेशन किए होंगे, सारे किताब किताब ढूंढ करके कौन सा बात में बोलेंगे, कौन बोलेगा, क्या चीज बोलेंगे, उनका तो बहुत कुछ उन्होंने अभ्यास करके पूरे सतर्क सावधानी हो करके आए होंगे, जानते हैं ही इज दी सुप्रीम बस। तो इसलिए सारे ऋषिगण देवतागण जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्मा जी तो उनके ही पुत्र थे, उनके द्वारा क्वालिफाइड उनके द्वारा एजुकेशन प्राप्त किए थे, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवया, भगवान ने उनके अंदर साक्षात अपने अनुग्रह से ज्ञान प्रदान किए थे, वो ब्रह्मा जी और शंकर जी उनके साक्षात अवतार मित्र सब कुछ है, और बाकी देवता में सब उनकी विभूति गण है और ऋषिगण है, सब मिलकर के जब सबसे सिलेक्टेड ज्ञान का दर्शन का और सब कुछ का चुने हुए भाषाओं में चुने हुए प्रकार के स्तुति कर रहे हैं सिलेक्टेड वर्स में, तो सबसे प्रथम श्लोक सभी मिलकर के गर्भस्थित भगवान के सामने सबसे प्रथम श्लोक अभी प्रणाम करने लगे, शरण में जाने लगे, प्रथम श्लोक में सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नः, हे परम सत्य आपके शरण में जाते हैं दी फास्ट, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं, भगवान ऐसे खुल करके बोले आपने मुख से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, भगवान चाहते हैं कि सभी उनके शरण में जाए, वही अकेले शरण देने वाले हैं और उनके छोड़कर बाकी सभी शरण लेने वाले हैं, और शरण के बिना काम नहीं बनता, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे आरसवे मरे अकारण, कुछ भी काम करने के लिए आश्रय तो चाहिए, आश्रय के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, और समस्त आश्रय के परम परम आश्रय श्री भगवान, भगवान चरण भगवत के चरण सबसे श्रेष्ठ आश्रय है, परम आश्रय, इन आश्रय के पास जाकर आश्रित हो जाना ही परम बुद्धिमान के कार्य है। तो इसलिए देवताओं ने सबसे पहले जाकर के भगवान को शरण जाना शरण ग्रहण करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके यही बात कहते हैं, सत्य व्रतं सत्य परं त्रिसत्यं सत्यस्य जोनी निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं नित सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। यहाँ इस श्लोक में केवल सत्य 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 9 बार सत्य कहे, और उसके आगे संख्या होता तो 9 के बाद एक अक्षर और संख्या नहीं, 2 अक्षर हो जाएगा, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री तक ले इतनी बार सत्य सत्य, क्योंकि सत्य केवल भगवान ही सत्य है। तो जब शरण जाते हैं भगवान, तो इसलिए सबसे पहले शब्द इस श्लोक में कहे सत्य व्रतम, क्यों, क्योंकि आप अपने व्रत के पक्के हैं, आप जो वादा किए हैं आपको पालन करने वाले हैं, जो कोई प्रतिश्रुति अगला देते हैं ना, कोई कोई संकल्प आदि करते हैं उसे व्रत कहा जाता है, आप कोई भाव टेकिंग किए उसको पालन करने के लिए तो उसको कहते हैं व्रत धारण किया उन्होंने, जैसे अब एकादशी अगला के दिन कम से कम कुछ घंटे के लिए पानी वाले नहीं पिएंगे या ग्रेन से नहीं खाएंगे करते हैं, बाकी सजला सफला तो होता है लेकिन फिर भी कुछ तो नियम लेते हैं, तो उसको बोलते व्रत एकादशी व्रत पालन करते हैं, क्या व्रत ना, वो कुछ समय के लिए कुछ ये चीज नहीं खाऊंगा, ये करूंगा, कुछ जप आदि ज्यादा करूंगा, इस प्रकार के व्रत। तो भगवान भी व्रत धारण करते हैं, क्या व्रत ना, भक्त पालन आदि व्रत, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य सबसे पहले बोल दी भगवान के व्रत है, व्रत है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति, मैं प्रकट होता हूं। और रामायण से ये एक श्लोक लिया गया कि भगवान ने व्रत धारण, बोले एतद् व्रतं मम, भगवान ने कहे थे ये मेरा व्रत है कि जो कोई भी आ करके अपने सच्चे हृदय से एक बार भगवान को कह दे सकृदेव प्रपन्नायम तब अस्मि इति याचते, हे प्रभु मैं आपका हूं, बिल्कुल निष्कपट रूप से हृदय से बात कोई कह दे प्रभु को, हे प्रभु मैं आपका हूं आप मेरे हैं, दैट्स इट। बोलते वो तो एक बार कहेगा, सकृत कहेगा मैं सदा के लिए ददामि सर्वदा व्रतंग मम, उनको सदा सर्वदा के लिए रक्षा कर दूंगा, भय से बचा दूंगा, निर्भय कर दूंगा, अभय मंत्र तो उनको सर्वदा के लिए अभय पद दे दूंगा, प्रभु का ये व्रत है। बोले एतद् व्रतं मम, ये मेरा व्रत है, इस व्रत को भगवान कभी भी नहीं तोड़ते, इसलिए भगवान को याद दिलाते हैं, बोले प्रभु आपने अपने व्रत के पक्के हैं, इसीलिए हम सबको बचाएंगे, कंस को मारेंगे, सत्य व्रत हैं आप, सत्य व्रतं सत्य परम, आपको प्राप्ति करने के लिए सत्य ही चाहिए, सत्य के बिना आपको प्राप्ति करने का उपाय नहीं है, मतलब ये सत्य भक्ति के लिए कहा गया है। प्रभु अगर आपको कोई जानना चाहता है, आपको कोई पाना चाहता है, तो सत उपाय लिखा, सत उपाय और कोई उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है, वह है भक्ति, भक्त्या माम अभिजानाति, यह परम उपाय भगवत प्राप्ति के। तो इस प्रकार उन्हें कहते हैं समस्त ब्रह्मादि देवता वृंद कंस करागर में आकर के स्तुति करने लगे, हे भगवान आप सत्य विग्रह हैं, हम आपके शरणागत हो रहे हैं, ये भू भुव स्व आदि 14 भुवन में बहुत से देहधारी जीव निवास करते हैं, किंतु उनमें कोई भी सत्य विग्रह नहीं है, अपना अपना कर्मफल भोगने के पश्चात खिद्र कीट से लेकर ब्रह्मा तक सभी के विग्रह या देह पतन हो जाते, सब मरते रहते, अतएव इनमें किसी के भी शरणागत होकर कोई भी निश्चिंत नहीं रह सकता, उनके शरण में जाकर कोई गारंटी नहीं है बचाएंगे, इस नहीं हो सकता, परंतु आप सत्य विग्रह है, आपके शरणागत होने से कोई दुखी नहीं रह सकता, कोई भी जागते की वस्तु सत्य नहीं है, एकमात्र श्री जगन्नाथ ही सत्य है, जगत के कोई वस्तु सत्य नहीं है, केवल जगन्नाथ सत्य है, जो कोई उनके शरणागत होता है वह भी सत्य को प्राप्त कर लेता है, कोई भी जीव स्वर्ग में जाकर चिरकाल वहां रह नहीं सकता, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति, पुण्य क्षय होने पर भरत लोक में आना ही होता है, परंतु श्री गोविंद के श्री वृंदावन चंद्र के चरणारविंद में शरणागत होने पर उनकी कृपा से पार्षद देह लाभ होता है और वहां से कभी पतन होता ही नहीं, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, मेरे धाम में आने पर फिर लौट कर जाना नहीं होता, ये भगवत वचन है, न स पुनरावर्तते, ये सब श्रुति वाक्य है। तो यह भली भांति प्रमाणित हो जाता है कि भगवत धाम ही सत्य है, अतएव सत्य आत्मा जस्य, अर्थात जिनकी आत्मा अर्थात देह सत्य है, एवं सत्य आत्मा जस्मात् अर्थात जिनका भजन करने से सत्य देह या पार्षद देह प्राप्त होता है, भगवान के शिविग्रह सत्य है और भगवान को प्राप्ति करने का जो ये सही भक्ति जो उपाय करता है, भगवान के भजन जो करता है, वो भी सत्य स्वरूप भगवत पार्षद देह प्राप्त करता है। तो ब्रह्मादि देवगण के सत्य मूर्ति भगवान के चरण में शरणागत होने से उन्हीं की कृपा से उन्हें सत्यता की स्फूर्ति होने लगा, क्योंकि सत्य स्वरूप सत्य मूर्ति भगवान के चरण में जाकर के शरणागत हुए तो उनके हृदय में भी सत्य की स्फूर्ति होने लगा एवं वे सत्य व्रतंग आदि विशेषण से उनकी भक्ति करने लगे। सत्य जो प्रकाश पाने लगा उनके हृदय में, तो सबसे पहले उनके मुख से शब्द निकला, हे सत्य व्रतम, आप सत्य व्रत है। ये सब भगवान के सत्यता की स्मरणा से ये शब्द निकलता है, सत्य व्रतम। जिनका आपने भक्तों को पालन रूप व्रत सत्य है, उनका नाम सत्यव्रत है। अतएव ब्रह्मादि देवताओं का वक्तव्य यही है कि हे भगवान, आप प्रपंचातीत नित्य धाम में स्थित होकर भी प्रपंच जगत के भक्तों का पालन करने के लिए इस प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना व्रत तोड़ना नहीं चाहता, अतएव आप भी अपने इस महाव्रत को पालन करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। कंस आदि असुर के अत्याचार से प्रपीड़ित भक्तों का दुख दूर करने के लिए आपका गोलोक से इस भूलोक में आगमन हुआ है। श्री भगवान ही सत्य परंग है, अर्थात सत्य ही उनकी प्राप्ति का साधन है। जो व्यक्ति सत्य का आश्रय ग्रहण करता है, वही उनकी चरण सेवा प्राप्त करता है। यहाँ सत्य शब्द का अर्थ भक्ति योग है, ज्ञान योग और ध्यान योग आदि नहीं है, कर्म योग आदि नहीं है। क्योंकि यही ध्यान, कर्म, ज्ञान और भक्ति इसी उपाय से संसार बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, सच्चिदानंद वस्तुओं का अनुसंधान किया जा सकता है। इनमें से भक्ति योग ही केवल परम सत्य है, क्योंकि भक्ति योग साधन अवस्था में और सिद्धि अवस्था में दोनों काल में समान रहता है। और अन्य कोई योग उपाय साधन और सिद्धि में सेम मेंटेन नहीं रहते। साधन तो करेंगे लेकिन सिद्धि होने से भी साधन छूट जाता है और नहीं रहता। लेकिन एकमात्र भक्ति अंग है जिसका साधन ही है श्रवणम कीर्तनम, उसी के साधन करते करते जब आप सिद्ध हो जाएंगे पार्षद, तभी भी जाकर श्रवण कीर्तन करेंगे परम भाव से। तो इसलिए यही उपाय है सत्य उपाय। इसलिए भक्ति योग ही एकमात्र सत्य पंथा है, सत्य उपाय है। इस समय भगवान देवकी के गर्भ में आविर्भूत हुए हैं। इसके पश्चात जथा समय में पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर वे माता पिता सखा और प्रेयसी के साथ वात्सल्य सख्य और मधुर रस का आस्वादन करेंगे। प्रत्येक कल्प में भगवान कृष्ण आविर्भूत होकर के अपने नित्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, किंतु मत्स्य कुर्म आदि अवतारों में ऐसी मधुर लीलाएं प्रकट नहीं किए। भगवान की कृपा से ब्रह्मादि देवताओं को पूर्व कल्प की श्री कृष्ण लीला कथा का स्मरण होने पर वे कहने लगे, त्रिसत्यम, अर्थात हे भगवान, आप सबके आदि सर्व कारण कारण एवं सदा ही एक रूप है, अर्थात भौतिक देह की भांति क्षण क्षण में आपका रूप परिवर्तन नहीं होता, फिर भी आप पिता माता सखा एवं प्रियसियों की मनोरथों को पूर्ण करने के लिए बाल्य पौगंड और किशोर इन तीन रूप को प्रकाश करते हैं। ये तीनों स्वरूप ही नित्य है। या यथा भुवि वर्तन्ते पुर्या भगवतः प्रिया तास्या तास्तस्या सती संति वैकुंठे कृष्ण लीलार्थम आदृता, अर्थात श्री भगवान की प्रकट लीला में रसास्वादन के लिए उनकी जो जो प्रिय लीलास्थलियां अयोध्या मथुरा आदि समस्त धाम पृथ्वी में विराजमान है, ये सभी धाम अप्रकट लीला का रसास्वादन के लिए श्री वैकुंठ में भी नित्य विराजमान है। ये भी सब सत्य है। वैकुंठे भुवने नित्ये निवसन्ति सहज्वला अवतारा सदा यत्र मत्स्य कर्मादयो अखिलः, अर्थात नित्य सचिदानंदमय महा उज्ज्वल वैकुंठ में श्री भगवान के समस्त मत्स्य कर्मादि सचिदानंद घन विग्रह अवतार वृंद भी सदा निवास करते हैं। श्री भगवान की कृपा से ब्रह्मादि देवताओं के हृदय में उनका धाम एवं अवतारों की सत्यता स्फूर्ति प्राप्त होने से वे कहने लगे, सत्यस्य जोनिम और निहितम च सत्य, भगवान यथा मत्स्य कुर्मादि अवतारों के जोनी है, क्योंकि वही उद्गम स्थल है, उन्हीं से अवतार सब आते हैं, उनके मूल कारण है। और हमेशा ये सच्चिदानंदमय सत्य धाम में रहते हैं, इसलिए निहितम च सत्य वही नित्य विराजमान रहते हैं। अवतारा ही असंख्या हरेर सत्य निवर्धिजो निवर्धिजा जथा विदासिनः कुल्या सरसहस्यु सहस्रशः। अर्थात जैसे अक्षय सरोवर से असंख्य नद नदियां निकलकर विभिन्न स्थान में प्रवाहित होती है, वैसे ही शुद्ध सत्व के अक्षय सरोवर भगवान श्री कृष्ण से ही असंख्य अवतार रूपी नदियां आविर्भूत होकर जगत का कृतार्थ करती है। इस प्रकार प्रथम स्कंद के वचन से श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के मूल कारण है, यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है। ब्रह्मादि देवगण श्री गोविंद का महात्म कीर्तन करते करते अंत में कहते हैं, सत्यस्य सत्यम, श्री भगवान समस्त सत्य वस्तुओं में परम सत्य है, जितने सत्य है उनमें ही परम सत्य है। नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम, अर्थात जो नित्य वस्तुओं में भी परम नित्य, चेतन वस्तुओं में भी परम चेतन है। इस प्रकार उपनिषद के वचन को वचन से नित्य के भी नित्य रूप में भगवान का स्वरूप निर्णय हुआ है। सत्य से सत्यम, इसीलिए हे सत्य आत्मा आपके हम शरण में आते हैं, आप हमारा संरक्षण प्रदान करें। ये शरणागति, शरणागति ही जीव का परम धर्म है। भगवद गीता संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एपिटोम ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, और इसी भगवद गीता को कोई ठीक से समझे, पूरे भगवद गीता नॉलेज को प्रीसाइज करते करते और कंट्रास्ट करते करते और सार सार निकाल कर अंत में यही सार निकालते कि भगवान कहते हैं केवल एक ही बात, सरेंडर अनटू मी, दैट्स इट। शरणागति ही परम धर्म। धर्म सिखाते हैं, धर्म स्थापना करने के लिए आया, और धर्म स्थापना करने के लिए आते आते अंत में कहते हैं सारे धर्म छोड़ो। अरे सारे धर्म छोड़ो क्यों? नहीं, एक धर्म को स्थापना करने के लिए बाकी सारे धर्मों को छोड़ना पड़ेगा। कौन सा धर्म? ना जो सबसे श्रेष्ठ परम धर्म, वही धर्म है श्री शरणागति धर्म, शरणागति। तो ये शरणागति भगवान गौरांग महाप्रभु आए, सिखाए शरणागति भकतेर प्राण, भक्तों का और भक्ति का जो लाइफ है, जो प्राण है, वही शरणागति। उनके बिना भक्ति जीवित नहीं रह सकता, भक्त प्राणहीन हो जाएंगे शरणागति के बिना। शरणागति तो प्राण है, तो ही शरणागति मूलक। ये शरणागति का श्लोक संपूर्ण देवता ऋषि मंडली श्री शरणागत वत्सल अत्यंत आश्रय देने में समर्थ श्री भगवान के सामने ये अपने वक्तव्य प्रकट करते हैं सबसे पहले। और वक्तव्य में बार बार भगवान को सत्य सत्य करके घोषणा की, बोले प्रभु आप सत्य है, दुनिया में जो भी कुछ सत्य है आपके वजह से सत्य है। भगवान कभी कुछ भी बोले, उन्हें आप कुछ भी बोलेंगे, आप ही सत्य, सत्य से सत्य, सत्य से जोनी, सच आपसे निकलेगा कहां से? महाभारत में एक बात कहा गया कि कृष्ण में सत्य प्रतिष्ठित होता है और कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं, दोनों दोनों में रहते हैं। एक ऐसे कहानी आता है महाभारत में, आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसे पुरुष थे जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, वो उनके जन्म से कभी भी असत्य वचन नहीं कहे, कभी भी उनका जिह्वा से कभी मिथ्या वचन नहीं निकला, इतने सत्य धर्म पालन करते थे, उन्हें कट्टर सत्यवादी थे, प्रसिद्ध था उनका वाद, अजात शत्रु थे वो, सबसे सत्यवादी थे। लेकिन एक ऐसे समय आया, ओ द्रोणाचार्य को मरना था, भीष्म आउट हो जाने के बाद में द्रोण जब कैप्टन बने, अब वो ऐसे युद्ध कर रहे थे, अब अर्जुन बोला कि सखा ये गुरु जी का तो बहुत पावर लगाते हैं, क्या करें, ये बूढ़े हटते नहीं। अब भगवान बोले शाम के समय, बोले ऐसा करो गुरु जी अब सामने रहेगा तो कुछ काम नहीं बनेगा ना, क्या करें, बोले तू तो उनका शिष्य हो, जाकर उनके ऊपर पूछ। भगवान ने प्रमटिंग किया अर्जुन सिखा बोले जा करके शाम को जब खत्म हो जाता है अप टाइम में जाकर पूछो बोले गुरु जी प्रणाम करो बोले आप आपने मृत्यु का उपाय मुझे बता दो हारने का उपाय बता दो आपको मैं कैसे पराजित कर सकूं सामना सामने तो पराजित होते नहीं। तो देखिए जो धर्माचारी है जो सत्यनिष्ठ रहते हैं वो सत्य अपने के मरने का अपने हारने का उपाय भी बता देंगे। भीष्म ने भी बता दिए द्रोण भी बता दिए बोले बेटा अब देखो मेरे हाथ में एक लाठी भी रहेगा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता मैं जब अस्त्र त्याग दूंगा तो मुझे कोई हरा सकता है मैं आपसे कुछ भी कर सकता मेरे हाथ में अस्त्र रहेगा तो कोई सारे देवता मिलकर मुझे कोई हटा नहीं सकते ये मुझे शंकर जी का वरदान है मैं जब निरस्त्र हो जाऊंगा तब कुछ कोई कोई भी आकर मार दे काट ले कुछ भी कर आप निरस्त्र कब होंगे युद्ध में कोई अस्त्र छोड़ेंगे क्या बोले मैं अस्त्र छोड़ दूंगा मेरा बेटा के प्रति मैं बहुत आसक्त हूँ मेरा बेटा अश्वत्थामा एक ही बेटा है उसके लिए तो मैं धर्म परिवर्तन ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय बन गया उनकी वजह से अगर उनका कुछ गड़बड़ हो जाए मुझे पता है कि वो चिरंजीवी है तो मरेगा नहीं लेकिन पता नहीं अगर कहीं उनका गड़बड़ हो गया तब मैं युद्ध काहे को करूं मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बढ़ जाऊंगा मैं नहीं फिर लड़ाई नहीं करूंगा मरने के तैयार लेकिन वो सब जानते हैं और आपके बेटा तो चिरंजीवी सप्त चिरंजीवी में से एक है वो किसे मरेगा ना फिर भी यही तो मैं आ सकती हूँ वो तो मर मुझे पता है लेकिन फिर भी बाई चांस कुछ हो जाए इसे गड़बड़ी तो फिर मैंने जो धने करूंगा अस्त्र त्याग तो ये बात जब आकर कहे तो भगवान बोले कोई बात नहीं उसको व्यवस्था करते हैं बेटा को उड़ा देते हैं बेटा को मरवा देते हैं बेटा मरेगा नहीं अरे मरेगा नहीं फिर मर जाता है उसमें क्या है बोले वो आश्चर्य होगा और छोड़ देगा जब ढूंढेगा फिर नहीं छोड़ देगा तो बेटे को कैसे मारेंगे इस चिरंजीवी को तो भीम को भगवान ने बोला बोले भीमसेन क्या अगर बोले मारने से मरेगा नहीं वो जीवित रहेगा उसको बोले वो जीवित रहे अरे अश्वत्थामा अकेला थोड़ी और भी अश्वत्थामा होते हैं ना एक हाथी तो है उसको अश्वत्थामा हाथी भारी हाथी है बोला हाथी के चपट करो हाँ लेकिन ऐसा करो कि अश्वत्थामा भी फिरार हो जाए मतलब गायब हो जाए कहीं दिखाई ना पड़े ढूंढने से कोई उनका मीडिया ग्रुप भी उनको रिपोर्टर भी उनको पता नहीं लगा पाए ऐसे हाल करो। भीमसेन बोला सर देखिए मैं कर लूंगा काम। भीमसेन ने दूसरे दिन युद्ध में जो अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था उसको तो मारा और उसके बाजू में ये महारथी अश्वत्थामा रथ में बैठा था। भीम इतने जोर से गदा घुमाया हाथी के मारने के लिए एक गदा जैसे हम लोग का इतने ताकत है हम जो हाथ जोर से हिला देते हैं एक छोटी सी टुकड़ा आधा मिलीमीटर के पेपर एक उड़ जाता है 2-4 इंच है ना इतने तक उड़ा सकते हैं छोटे से पेपर को। तो भीमसेन ने अपने गदा घुमा दिया युद्ध भूमि में वो इससे जितना हवा निकला और रथ सहित गाड़ी में बैठे थे अश्वत्थामा ड्राइवर भी था घोड़े भी थे रथ सहित उड़ गया युद्ध भूमि से उड़ करके कहां चला गया कितने किलोमीटर कहां गया कोई पता होता नहीं चला उड़ गया बस ये तो मर गया हाथी तो मर गया लेकिन वो उड़ गया कहां के उड़कर गया कितने जोजन दूर चला गया पता नहीं यार मैं जा करके कहां गिरा मरा तो नहीं लेकिन चला गया बहुत दूर कई जोजन आने में उनको एक आध दिन लगा वहां से पता होता लगा एड्रेस फाड्रेस ढूंढ के फिर आया उन्होंने लेकिन तब तक हल्ला किया अश्वत्थामा मार दिया अश्वत्थामा हाथ अश्वत्थामा मार दिया द्रोणाचार्य से बेटा बेटा को मार दिया अरे मारा अब भी मारा देखो अब हाथी मर के पड़ा था मारा द्रोणाचार्य बोले हटा रिटे सही अश्वत्था मर गया ना हम अश्वत्था मरा गुरु जी है आप देखते देखते बेटा को मार डाला क्या बात कर रहे हैं हमारे सामने कोई यही से भीम गरज गरज करके बोला द्रोणाचार्य वुंडेड हो गए। अर्जुन को पूछे अर्जुन तो कृष्ण की शिष्य थे वही बोले हाँ गुरु जी क्या करो मार दिया भाई साहब ने मार डाला अरे मर गया बेटा बहुत बिल्डर हो गए द्रोणाचार्य ढूंढे उनके साइड में जितने बड़े बड़े सब सेनापति थे जितने सभी को ढूंढे बोले अश्वत्थामा कहा है मेरे पुत्र ना गुरु जी अश्वत्थामा नहीं है ये थे तो वही अब कहीं चले गए उनके लापत्ता हो गए मिलते ही नहीं ये मरे पड़े वो क्या हो भीमसेन के सामने गए थे वो तो गए भीमसेन बोलते मार दें करके पता नहीं शायद हम सरी सार हम तो पता नहीं बोलते है ही नहीं लेकिन इधर दूर दूर तक दौड़े घोड़सवार सब ढूंढने के लिए कहीं पता होता नहीं मिला। अब भीमसेन गरज के बोलता अरे मिलेगा क्या मार डाला उसको खत्म कर डाला। अर्जुन भी बोलते हैं तब इतने बिल्डर हो गए द्रोणाचार्य, आकर के बोले ना आप लोग भरोसा नहीं, मैं जानता हूं मेरा एक स्टूडेंट है युधिष्ठिर, वो निश्चित सत्य बोलेगा, सत्य के अलावा कोई असत्य भाषण कर ही नहीं सकता, मेरा पूर्ण विश्वास। उनके पास दौड़ कर आए, जब युधिष्ठिर के पास आ रहे थे, अर्जुन बोले सखा ये जा रहे भाई साहब के पास, भाई साहब को जानते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो बोली डालेंगे, नहीं असत्मा कैसे मरा है, हाथी मरा वो बोल देंगे, आप कुछ करो नहीं, चलो चलो युधिष्ठिर भाई के पास जल्दी ले चलो गाड़ी। कृष्ण जल्दी गाड़ी लेकर के गए, युधिष्ठिर को बोले कि युधिष्ठिर भैया ना क्या ना अभी आपके सार आ रहे हैं पूछने के लिए, आपको टीचर से गुरु जी आ रहे हैं, वो बोल देना कि असत्मा मर गया। बोले मैं असत्मा कैसे मरा, असत्मा मरा थोड़ी, ओ असत्मा मर नहीं सकता ना, अरे मैं बोलता हूँ बोल देना ना, कृष्ण माफ करे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ फिर गुरु जी के सामने, ना रे अश्वत्थम मरा ना, ना तो हाथी ना तो बोल देना अश्वत्थम हत्ता, इतने तो बोलो, फिर बाद में बोला हाथी करके बोलना अश्वत्थम हत्ता इति गज, इतने तो बोलेंगे ना, ना हाँ वो तो बोलने में क्या, हाथी तो मरा है, बोला आप इतना बोलना बाकी हम मैनेज कर लेंगे। तो कृष्ण की बात को डायरेक्ट नहीं माने, इनडायरेक्टली भगवान उनको मनाए। और जब आ करके द्रोणाचार्य पूछे मेरे पुत्र मेरे छात्र युधिष्ठिर क्या अश्वत्थमा हता, संस्कृत में पूछे अश्वत्थमा मर क्या गया, तो युधिष्ठिर महाराज आपने फूल भाषण बोले गुरुजी प्रणाम है अश्वत्थमा हता इति गज, गज रूपी अश्वत्थमा वो मरा ही कहना चाहते, जैसे अश्वत्थमा हता फूल भल्यू में भगवान बढ़ा दी, पूरा उनको सुनाई पड़ा, इति गज कहे साउंड बजा दे सुनाई नहीं पड़ा, सुनाई नहीं पड़ा, इतने गड़बड़ कर दे सुनने में, द्रोणाचार्य वृद्ध हो गए थे उनको तो सुनाई पड़ा, बोलो असत्मा तो युधिष्ठिर बोला और इति गजा सुनाई नहीं पड़ा। आप बोले कि अच्छा युधिष्ठिर बोला असत्मा मर गया, तब मतलब असत्मा मर ही गए, तब मैं क्यों लड़ाई करूं, बिल्कुल वितृष्णा होकर के उग्र होकर के अस्त्र त्याग दिए, रथ से उतर गए, सारे अस्त्र पर छोड़ करके बैठ गए, आसन लगा कर वीरासन बैठ, बोले ना और ध्यान मुद्रा बैठ गए। तब उनका बदला लेने लाने के लिए उनको मारने के लिए पैदा हुआ था धृष्टद्युम्न, दौड़ कर जाकर उन्होंने गला काटा मार डाला। तो कहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज भी जब महाप्रयाण हो रहा था, जब स्वर्ग रास्ता में स्वर्गारोहण के समय जा रहे थे, सब अपना अपने शरीर छोड़कर तो भगवान धाम गए, बाकी अपने भाई सारे सब डायरेक्ट चले गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सब शरीर में गए, इस शरीर के नहीं छोड़े उन्होंने, इतने पवित्र शरीर था, धर्मराज थे। तो जब गए उनको नरक होकर के जाना पड़ा, सब आश्चर्य बात उठा, भाई धर्मराज है, कभी धर्म से विचित नहीं हुए हैं, कभी भी असत्य भाषण नहीं किए हैं, उनको कैसे नरक जाना पड़ा, बाकी ये खुल्लम खुले झूठ मूठ बोलने वाले भीम अर्जुन आदि कोई नहीं गए, वो सब डायरेक्ट पास, उनके युधिष्ठिर महाराज वो कैसे नरक होकर के गए। तो अन्य अन्य आचार्य गण सब कहते हैं जो महाभारत में टीकाकार, वो बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने एक बार झूठ बोले थे, नहीं युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले ना, हाँ कब ना, महाभारत युद्ध में जब उनके गुरुजी द्रोणाचार्य उनको पूछे अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में, वो झूठ बोल दिए, इसी के कारण उनको नरक में जाना पड़ा। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य टीकाकार गण बोले नहीं 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 नहीं, इसी के नरक जाना पड़ा, वही रास्ता होकर जाना पड़ा, पास होकर जाना पड़ा, लेकिन इसी वजह से नहीं कि उन्होंने झूठ बोल दिए। बोले क्यों, बोले हाँ झूठ बोले, लेकिन ये झूठ अश्वत्थामा तो नहीं बोले, बोले किसी लिए नरक जाना पड़ा ना, उनको ये दोष लगा, ये झूठा लगा, क्यों, क्योंकि साक्षात परम सत्य सत्य से जोनी भगवान कृष्ण उनको बोले बोल दो अश्वत्थामा मर गया करके, उनको बोले नहीं, वो सोचे बोले कैसे झूठ बोलूं, ये जो टाइम लिए सोचने के लिए, डाउट किए कृष्ण मुझे झूठ बोलने के लिए बात कर रहे हैं, इसी के दोष लग गया, कोई पाप लगा, इसी पाप के कारण उनको जाना, बोले ये कौन सा कृष्ण तो झूठ बोले, भाई कृष्ण से झूठ निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य से जोनी कृष्ण से ही सच निकलता है, झूठ से जोनी नहीं है, झूठा उनसे नहीं निकले, कुछ भी कृष्ण से निकलेगा, कुछ भी निकलेगा वाणी किसी प्रकार से तो सत्य ही होगा, क्योंकि कृष्ण सत्य से सत्यम, सारे सत्य की सत्य परम सत्य स्वयं है, नख से सिख तक केवल सत्य ही सत ठुस के भरा हुआ है उनके अंदर, सत चित आनंद है, तीनों सत्य है, इसलिए त्रिसत्यम, सत्य से जोनी यही तीन सत्य है, तो हमेशा सत्य के रूप में रहते हैं, उनसे कुछ भी शब्द कुछ भी निकला वाणी वो सत्य है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये सापेक्ष सत्य को मानते थे, ये परम सत्य के बारे में उनका आइडिया नहीं था, ये इस भौतिक ब्रह्मांड की दुनिया की जो घटना होता है वो बोले तो हुआ ही नहीं, ये कैसे सच नहीं, मैं कैसे सच झूठ, इस प्रकार परिभाषा से समझ रहे थे। लेकिन ये सब सच्चा झूठ तथा कथित प्रपंचित झूठ सा सच के परिभाषा से कई ऊपर, उनसे परे है भगवान के सत्य। हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे बुद्धि, हमारे चिंतन शक्ति, हमारे विचार इस सत्य के बारे में कोई गणना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन वास्तविक दी ट्रूथ, दी सत्य है भगवान, और भगवान से जो वाणी निकलेगा वही सत्य है। तो उनको कोई इतने फिलोसफी अंडरस्टैंडिंग करके मान ले या कुछ न मान करके मान ले, भीमसेन हम भैया बोला सत्य, हम बोल देता हूं। भगवान के बात को कोई सोच विचार नहीं, इमीडिएट एक्सेप्ट किया, वो परम सत्य हो, भगवान परम सत्य है। भगवान को आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए, आंख बंद करके उनके शरण में जाना चाहिए, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंडली शरण में जाना चाहिए। अब क्योंकि आप समझने के लिए भरमा चाहेंगे, भगवान बोलते हैं मुझे अभी तक समझने वाला कोई दुनिया पैदा ही नहीं हुआ, मुझे कौन समझेगा भैया, नाम विदु सुरगणा प्रभवंती न महर्षयः, अभी कोई सुरगणा ना बड़े बड़े महर्षि महान ऋषि मुझे समझे, अरे मैं ही खुद नहीं समझ पाता, तुम कौन से है मुझे समझेंगे, कोई नहीं समझ पाएगा भगवान। तो भगवान ऐसे सत्य है, तो इसलिए भगवान को समझ करके फिर बोलूंगा, फॉरगेट इट हो नहीं सकता। तो इसलिए भगवान जो बोलते हैं, भगवान के संबंध वही सत्य की परिभाषा है, सत्य के अलावा और उस पूरे चाहे प्रपंच में चाहे प्रपंचातीत लोक में, दोनों लोक में, नित्य धाम में, अनित्य धाम में, सब जगह में एकमात्र सत्य वस्तु शिव भगवान है। भगवान के नाम धाम, उनके लीला, वही सब सत्य है और कुछ नहीं। उनके अवतार सत्य है, उनके वाणी सत्य है, उनके नाम सत्य है, उनके लीला सत्य है, उनके विग्रह सत्य है, उनके भक्त सत्य है। इसी को तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं, अहंकारे मत्त हया नीताई पाद पासोरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। जो अहंकारी हो जाते हैं तो असत्य को सत्य मानते हैं, ये दुनिया के चीज देखा सुना उसी को बोलते हैं हित सच है। ये जन्म कुले की करी बतार, विद्या कुले की करी बतार, इतने पढ़ा लिखा ऐसे मनुष्य ने कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब जो अहंकार देता है इसमें असत्य को ही सत्य करके देखा, ये माया के फंस जाएंगे। असत्य रे सत्य करी मानी, नितायरी चरण सत्य तहरा से बको नित्य, एकमात्र सत्य वस्तु है नित्यानंद प्रभु के श्री चरण, नितायरी चरण सत्य। इसी बात को हमारे आचार्य लोग कहते हैं यही सत्य वस्तु है। बाकी सत्य को रिसर्च करके ढूंढने के लिए हम जाएंगे तो असत्य को ही सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि विद्या के द्वारा, कुल के द्वारा, अहंकार के द्वारा, आपने आपने जो पोस्ट पोजिशन जो सुबह हमारे पास, उसके द्वारा सत्य को ढूंढने जाएंगे तो सत्य तो नहीं मिलेगा, असत्य ही सत्य रूप में प्रकट हो जाएगा। अहंकारे मत्त हया नीताई पाद पासरिया, अहंकार में आने से नित्यानंद पद भूल जाएंगे, भगवान तुरंत गायब हो जाते हैं। जो भी अहंकार आया तो गए, इमीडिएट अंतर्धान हो जाएंगे। नित्याय पद पास हो गया, नित्याय पद भूल जाने से क्या होगा, ना असत्य रे सत्य करी माने, असत्य को बिल्कुल ऐसे ये माया के चक्कर सत्य में पड़ जाते, असत्य को सत्य करी माने, तो कैसे बचेंगे, ना श्री नित्यानंद के चरण को कभी छूना चाहिए। नित्याय चरण सत्य तहार से दृढ़ करी धर नित्याय पाद, दृढ़ करके पकड़ रखो, वो छूट ना जाए, वो छूट जाने से वो सत्य छूट जाएगा और असत्य ही सत्य जैसा लगेगा, यही गड़बड़ी है। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं भगवान अभी गर्भ में है, अभी बाहर नहीं आए, प्रकट नहीं हुए हैं। देवता लोगों को तो पता चल गया, हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग तो सामने आएंगे तब भी नहीं पता चलता है। लेकिन देवगण तो जानते हैं ना, वो परम ज्ञानी विभूति, उनका पास शक्ति है, जानकार है। तो उन लोग ने इस अदृश्य रूप में आकर के वहां पहुंच करके और इस प्रकार भगवान गर्भस्थ भगवान को स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति में सबसे पहले बोलते हैं, प्रभु आप सत्य है प्रणाम, तो इसलिए सत्य के प्रणाम करते के कारण आचार्य कहते हैं उनके अंदर सब सत्य प्रकट हो गया। अगर हम में से भी कोई सत्य को प्रकट करना चाहते हैं, सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो सत्य के शरणापन्न होना पड़ेगा, सत्य के शरण में जाने से सत्य स्मृति होगा, है ना। नहीं, अब बाकी दुनिया तो सारे असत्य है, लेकिन ये दुनिया भी सत्य हो जाएगा, यही दुनिया भी पंचभूत ये सब अवस्था सभी सत्य हो जाएगा अगर सत्य के सहारे हम जाएंगे तो। रित सत्य नेत्रम, इसको कहते हैं कि नेत्र, हमारा पास जितने इंद्रिया है सारे इंद्रिया की किसी को देखने का शक्ति है? प्रत्येक इंद्रिय को देखने का शक्ति केवल आंख इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, बाकी कान नाक बाकी जितने इंद्रिया है वो बेचारे काम करते हैं लेकिन देख नहीं पाएंगे। आपने विषय को इसे जान के, लेकिन देख सकना सारे इंद्रिय को देखने का शक्ति आंख, केवल आंख को देखने अपने आप को देख नहीं पाएगा, दूसरे के आंख को देख लेगा लेकिन अपने आप को देख नहीं सकता। ये अंतर्दृष्टि बहिर्दृष्टि, लेकिन फिर भी नेत्र समस्त इंद्रिय को लक्ष्य कर सकता है, देख सकता है। तो इसलिए अगर सब कुछ कब देखना चाहते हैं तो सत्य के द्वारा देखना पड़ेगा, तो ये है भगवान के शरणागत होकर के देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम कोई भगवान के धाम के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के नाम को जानकार कहते हैं, बोले कैसे समझेंगे, ना पश्यंती कैसे कर्ण चक्षुषा, ये आंख चक्षुषा नहीं, चक्षु का बात तो आया लेकिन ये हमारे पास जो गोला चक्षु है इसमें नहीं है, ये जो चक्षु का बात शास्त्र में कहा गया वो क्या पश्यंती कर्ण चक्षुषा, कहीं कहा गया शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र को कैसे आंख में थोड़ी पढ़ पढ़ कर समझेंगे, उसको गुरु से सुनना होता है, गुरु मुख से परंपरागत सुन करके कान के द्वारा सुनना होता है, इसलिए श्रुति शास्त्र का नाम श्रुति, सुन करके जो जानकारी है वही है सत्य, अब पढ़ करके देख कर जानकारी ये सब मिथ्या है। हम सामने सूर्य को देखते हैं एक फुटबॉल की तरह देखे, थाली की तरह दिखाई पड़ता है, मैं आपने आंख से देखा, आंखों देखा मैं आपने आंख से देखा, और आपने स्मार्टफोन में फोटो भी खींच लिया, लेकिन जो फोटो खींचा और जो आपने खुद देखा, क्या फोटो स्मार्टफोन के आंख में देखा, आपने आंख को देखा, दूसरे कुछ कईयों के आंख में भी देखा, तो सारे झूठ निकलेगा। सच क्या है, जो कान के आंख से देखा, कान से सुना, भाई लख्य 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 गुना बड़ा है इस पृथ्वी लोक से, तुम क्या बोलते थाली के बराबर है तुम्हारा आंख ये सच वस्तु को देख नहीं सकता, कान सत्य वस्तु को सुन नहीं सकता अगर सत्य के आधार नहीं हो, किसी ना सत्य को सुना, किसी प्रकार सत्य के अनुभव तभी होगा जब सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्नः, सत्य की शरण में जाने से सत्य अनुभव होगा, सत्य की स्फुरण होगा और सत्य को जान पाएंगे, और सत्य को जानने के उपाय ही सत्य है, इसलिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हम अगर सत्य को जानना चाहेंगे और हमारे इंद्रिय तो सारे असत्य हैं, अपूर्ण हैं, तो कैसे जानेंगे, तो ये देवता लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं सत्य के शरण में जाओ। कैसे शरण में जाएं, सत्य के शरण में जाएं कैसे, हमारे पास एवरीथिंग इज असत्य, हमारा देह असत्य है, हमारी वाणी असत्य है, हमारे इंद्रिय असत्य है, विषय असत्य है, एवरीथिंग इज असत्य, वी आर विद इन सराउंडेड बाय फुल असत्य। फिर कैसे जाएं, बोले भाई जिनके शरण में जाएंगे ये तो सत्य है, ये तो मानो ना, वो सत्य है, अभी हमारे सामने तो है ही नहीं, जिनके शरण में जाने के लिए प्लान करते हैं वो सत्य है, तो किस उपाय से उनके शरण में जाए, बोले उपाय तो एक ही है, जो उपाय है वो भी सत्य है, नो क्या ना, ये भजंती तुमांग भक्तिया, भक्ति ही एकमात्र वही उपाय है, वही साधन है जो सत्य है, और कोई उपाय सत्य नहीं है, चाहे ज्ञान में जाओ, ध्यान में जाओ, कर्म में जाओ, ये सब असत्य है, केवल भक्ति ही एकमात्र सत्य उपाय है जिसके द्वारा सत्य को जाना जा सकता है, इसके द्वारा सत्य की स्मरणा हो सकता है, और प्रविष्टंतु वो भगवान को केवल ज्ञात्वा प्रविष्टवा, भगवान खुद बोले, बोले मुझे जानोगे भी मेरे पास आओगे भी, अगर भक्ति के सत्य उपाय को अवलंबन करोगे तो मुझे जान भी पाओगे, मेरे पास आ भी पाओगे, लेकिन बाकी कोई उपाय करो, जानना तो दूर की बात है, आना तो कहां समझे, सब पॉसिबल ही नहीं, केवल मिथ्या को लेकर के बड़बड़ाते रहेंगे, मिथ्या से बढ़ते मिथ्या से, तो इसलिए मिथ्या से हट करके सत्य के दर्शन करना, सत्य दर्शन करना, सत्य अनुभूति करना, और सत्य के ये सब करने के लिए सत्य के शरणागति होना चाहिए, सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्न। तो इसलिए हम लोग सब भगवान की जन्म के अव्यवहित पूर्व में, ऐसे भगवान तो है नहीं, भगवान के माता पिता और ऋषियों के पद चिन्ह को अनुसरण करके, उनके वाक्यों के आधार बना करके, कान के द्वारा सुन करके, उनके बात को सुन करके हम भी इस प्रकार इस सत्य को अनुभव करने का, जानने का, उनके शरणागत होने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन के एकमात्र कृतकृत्य होने का उपाय है। अपना जीवन को कोई सफल करना चाहते हैं तो यही एक उपाय है, सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्नः। यही से भगवान की, परम भगवान की शरणागति ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो यही शरणागति को भक्ति के द्वारा ही, भक्ति के प्राण है शरणागति, यही भक्ति के द्वारा भगवान के शरणागति। दीज टू थिंग्स, प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, फुली सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, बस खत्म। यही दोनों में हमारे अधम जीवन सधम हो सकता है, वही सफल हो सकता है, सत्य हो सकता है, सारे असत्य सत्य हो सकता है, सत्य की अनुभूति भी हो सकता है, और सत्य में पहुंच सकते हैं और सत्य के आस्वादन भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। So, is there any comment or question, Radhishyam Prabhu?
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर वेरी नाइस क्लास। तो महाराज आप बता रहे थे कि हमें भगवान का शरणागति लेना है, तो कुछ आप मतलब प्रैक्टिकल चीजें बता सकते कि भगवान का सरल रूप से शरणागति कैसे ले सकते?
प्रैक्टिकल आपके बाजू में बैठे राधेश्याम प्रभु जैसे करते हैं, जस्ट फॉलो हिम, दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ शरणागति, हाउ ही इज डूइंग, हाउ ही इज टेलिंग, हाउ इज टीचिंग, फॉलो दैट।
यस महाराज, थैंक यू।
हरे कृष्णा।
यस सर।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा
महाराज, ये जो महाराज अभी यहाँ पर हम देखते हैं सभी देवता प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इसमें इंद्रा और ब्रह्मा जी एब्सेंट थे, क्योंकि बाद में दोनों जन भूल जाते हैं कि भगवान परम सत्य है।
कौन बोला? आप देखे थे क्या एब्सेंट थे करके? आप अटेंडेंस ले रहे थे क्या?
नहीं, ऐसा लग रहा है क्योंकि बाद में ब्रह्म विमोहन लीला होता है
और जो अटेंडेंस ले रहा था वो बोल रहा है कि थे। आप अटेंडेंस ले थे, आप किसे बोलते ऑप्शन देते?
नहीं, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है।
कैसे प्रतीत हुआ मुझे बताओ, समझा दो, मुझे तो प्रतीत नहीं हो रहा है। आपको कैसे प्रतीत हुआ बताओ?
नहीं, क्योंकि बाद में ब्रह्मा जी भूल जाते हैं कि भगवान पर,
क्या भूल गए?
ब्रह्म विमोहन लीला जब होता है तब।
ब्रह्म विमोहन लीला ब्रह्मा जी भूले नहीं है? कौन बोला ब्रह्मा जी भूल गए करके? अरे भाई, हम लोग को शिक्षा देने के लिए अगर भगवान कुछ ड्रामा करेंगे, हम जैसे ऑर्डिनरी लेंगे क्या? तो उनके ही सिलेक्टेड एक्टर तो नहीं ना ड्रामा करने के लिए। आप ड्रामा में कोई रोल करेंगे, आप बन जाएंगे रामचंद्र, तो के सचमुच रामचंद्र बन जाएंगे? अरे भाई, घंटा के लिए प्रैक्टिस करके खड़े हो जाए तो हो जाएगा क्या? तो ये तो रोल करके हमको सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए करते हैं। तो कैसे समझे कि ब्रह्मा भूल गए? वो भूले नहीं है, वो भूल नहीं सकते। भगवान अपने अनुग्रह शक्ति से उनको ज्ञान दिए हैं, आप अनुग्रह कैसे भूल सकते? मदन अनुग्रह आया। ओके,
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, आप शरणागति और आश्रय के बारे में बता रहे थे, तो मेरा प्रश्न ये था कि इसमें मतलब संबंध क्या है, या ये दोनों समान है, या इसमें कुछ भिन्नता है, इसमें कुछ मतलब इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप?
मतलब आप शरणागति और आश्रय दोनों का चाहते हैं, ये दोनों जानना चाहते हैं ना?
हाँ महाराज, दोनों
के। अरे बाबा देखो, ये दोनों लगभग यही है। शरणागति कहने का अर्थ है एक शरण देने वाला होगा, एक शरण लेने वाला होगा, आ समझ में? अपने आप तो शरण नहीं ले सकते ना, किसी के शरण में तो जाना पड़ेगा ना। आप शरणार्थी होंगे, और कोई शरण आपको देगा। और आश्रय में भी यही बात है, कोई आश्रित होगा और कोई आश्रय देगा, है ना? नहीं
हाँ, यस।
लेकिन जो शरणागति लेने के लिए आप शरणार्थी बन करके जाएंगे, आप डायरेक्ट नहीं जा पाए, किसी के आश्रय में जाना पड़ेगा, किसी के आश्रित में ही ये काम करना पड़ेगा, किसी के तत्वावधान में, किसी के देखरेख में करना पड़ेगा, वो भी आश्रय। ओके,
धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत आभार आपका, इतना सुंदर क्लास दिया आपने। महाराज मेरा ये प्रश्न था कि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो देवतागण है वो बोल रहे हैं त्रि सत्यम और तीसरे स्कंद में, हाँ, और तीसरे स्कंद में उद्धव जी बोलते हैं कि जो भगवान है कृष्ण वो सब जितने भी तीन हैं उनके भगवान मास्टर है, मास्टर है, लॉर्ड ऑफ द थ्रीस बोलते हैं, तो त्रयधीश, त्रयधीश। तो मेरा प्रश्न ये था महाराज कि दोनों में कोई दोनों सिमिलर हैं क्योंकि वही भगवान के ऊपर वो केंद्रित कर रहे हैं, या फिर दोनों में कुछ फर्क है, डिफरेंस?
दोनों एक ही बात है, तो त्रयीश्वर त्रयधीश है, सारे तीन के मास्टर है, मतलब तीन के तो मास्टर है ना, तो इसलिए तीन ही सत्य है। भगवान से जो भी संबंधित होगा सब सत्य वस्तु है, इसलिए त्रिसत्य है।
यहाँ पे ज्ञान बल क्रिया उनके यहाँ पे त्रि सत्यम के बारे में प्रभुपाद जी और विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर बताते हैं ज्ञान बल क्रिया के, लेकिन वहां पे ये बता रहे कि उसके लॉर्ड हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर ही हो रहा है,
सेम थिंग, सेम थिंग, कोई अंतर नहीं। कोई लॉर्ड अगर ज्ञान बल क्रिया से अलग हो जाए तो लॉर्ड रहेगा किसे, उनका लड़सी भी नहीं रहेगा, तो ही तीन चीज को होगा तब तो जाकर कुछ होगा। शक्तिमान के बिना, शक्ति के बिना शक्तिमान का क्या मतलब, शक्तिमान शक्ति के बिना भी क्या मतलब है ना, ये शक्ति त्रय हमेशा
है। और एक प्रश्न था महाराज, अभी एनवीसीसी से भक्त जो पूछ रहे थे कि ब्रह्मा का विमोहन के बारे में, तो मुझे जब मैं सुन रहा था मुझे ये प्रश्न आ रहा था कि जब ब्रह्मा, आपने तो बता दिया कि वो एक लीला था, किंतु हम जब देखते हैं कि ब्रह्मा जब आकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा ही है कि ब्रह्मा शिव आदि देवतागण आके ये प्रार्थना की कि आप त्रिसत्य हैं, सत्य पूरा श्लोक जो बोला उन्होंने और पूरे इतने सारे स्तुति किया, किंतु उसके ठीक ब्रह्मा के अनुसार वो केवल शायद 8 मिनट या कुछ ऐसा हुआ होगा, और यहाँ पे 8 साल 8 वर्ष बाद जो ये ब्रह्मा विमोहन लीला हुआ, तो हम अगर उसको इस तरह से देखें कि ब्रह्मा भूले थे, तो फिर ब्रह्मा अगर आदि मतलब सबसे पहले पुरुष हैं इस जगत के, अगर वो भूल गए तो फिर हमारा क्या होप है आगे?
नहीं, आई डू थिंक दैट भूल गए करके, अगर भूल जाते तो जो दशम स्कंद 14वां अध्याय में जो ब्रह्म स्तुति उसको पढ़कर देखिए, भूलने के तरह प्रमाण मिलता है, तो फिर हाउ कैन यू से दैट भूल गए, है ना? नहीं, और भगवान के सत्यता को प्रकट करने के लिए, भगवान की भगवत्ता को प्रकट करने के लिए, जो 14 ब्रह्मा स्तुति को प्रकट करने के लिए ये नाटक किया, भगवान से कराया उनसे, है ना? और जब भूलने भगवान से, भगवान के द्वारा मोहित होना होता गर्व की बात है ना, अपने बाप के सामने थोड़ा बेटा अगर हार जाते तो अच्छी बात है ना, बाप की महिमा बढ़ता है उसमें, तो भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ऐसा किए। शंकर भी मोहिनी रूप में मोहित हुए, ऐसे भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए किए। ओके,
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपकी कल के सत्र में इसके बारे में और भी कुछ आप बता सकते हैं, कैसे हम लोग शास्त्र के जो महान व्यक्तियां हैं, जैसे ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, शिव जी हो, इन लोगों से हम अच्छे सीख भी अपने जीवन में सीख ले, लेकिन साथ साथ हम उनके ऊपर अपराध ना करें, अपराध भावना से मत देखे उनको। तो आपके नाम के अंदर ही आश्रय नाम जुड़ा है, आप अच्छे तरीके से आश्रित हैं, तो हमको भी थोड़ा इसके बारे में और अच्छा बता देना कल, हम क्योंकि जैसे आपने बताया कभी कभी हमारे विद्यार्थी लोग भी थोड़ा सस्ता ले लेते हैं इस तरह की लीलाओं को। अरे इंद्र वो सोचते हैं इंद्र से मैं श्रेष्ठ हूँ, देखो इंद्र का देखो बुरा हाल हो गया ऐसे। तो कल आप और अच्छा महाराज मैं और भी आपसे सुनना चाहता हूँ आज, लेकिन मेरा गल्फ का एक प्रवचन है अभी जाना है मुझे, लेकिन आप कल के प्रवचन में इसके बारे में और विस्तृत रूप से बताएंगे तो बहुत मेहरबान होगा महाराज। अभी आपने बताया आपके अंदर इतना अटूट विश्वास है कि देवता लोग इत्यादि तो भगवान के हाथ में एक निमित्त बनकर हम लोगों को अच्छा सिखा रहे हैं, तो इस तरह की विश्वास हमारे हृदय में भी बैठे, हम उनके उनमें अवगुणों को मत देखे, इसका मैं और अच्छा आपसे सुनना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी, लेकिन आपसे हमारा आपका संग हमको सिर्फ 2 दिन प्राप्त हो रहा है, मैंने सुना आज और कल, और परसों आपको संडे को कुछ और कार्यक्रम आ गया सुना मैंने,
संडे को वृंदावन मंदिर में वो लोग पीछे पड़े हैं।
लेकिन महाराज आप इस तरह पुनः मंदिर के भक्तों के लिए देते रहिए महाराज, आप उनको बोलता हूँ युगलेश आपको कांटेक्ट करेंगे आपसे।
आपके आदेश आशीर्वाद रहेगा तो करते
रहेंगे। Anybody else want to ask any question?
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि भगवान का वाणी परम सत्य है और ये सत्य है, और भगवान अपने मुखबिंद से भगवद गीता में उन्होंने बताया, और हमें ब्लाइंड फेथ से मान लेना भी चाहिए, लेकिन महाराज जी हम भगवद गीता पढ़ते हैं लेकिन उस तरह का ब्लाइंड फेथ नहीं आता है उसके पीछे,
नहीं आता क्योंकि आश्रय लेना पड़ेगा ना, इसलिए शरण लेकर के पढ़ना पड़ेगा
महाराज जी। मुझे इसका सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन बताना है कि यू हैव टू टेक शेल्टर एंड देन रीड, आपने बुद्धि से आपने समझ, नहीं आई वांट टू रीड भगवत गीता, हु आर यू, रीड टू भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण तो से सुनो। ओके ओके नाउ इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आप लोग का ब्रेकफास्ट पहले हो जाता है हमारा बाद।
हरे कृष्ण महाराज।
हरि बोल, हु इज स्पीकिंग?
महाराज मैं जुगल किशोर दास बोल रहा हूँ।
ओ मास्टर,
हरे
ओके बोलिए सर।
महाराज मेरा ये प्रश्न था कि जब देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ गए थे भगवान को प्रार्थना करने के लिए, तो भगवान ने बताया कि सारे देवता को आप अलग अलग रोल निभा के जन्म लीजिए ब्रज में, तो अभी जो ये देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमने सुना कि जो 5 पांडव है खास करके अलग अलग देवता का देवता है, उनके अलावा बाकी शास्त्र में कोई प्रमाण है कि दूसरे देवता लोग खास करके ब्रह्मा जी शिव जी और इंद्र इत्यादि कोई रोल ले, इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे महाराज?
तो आप कहना चाहते हैं कि वो लोग सब प्रकट होते पर वो यहाँ कैसे रहे, यही जानना चाहते हैं ना?
हाँ महाराज।
हाँ तो भैया अपना सेना सामर्थ्य नहीं है, देवताओं का सामर्थ्य है, कई एक्सपांड कर सकते हैं अपना, है ना? नहीं जैसे आप पुणे में अभी तक बैठे हैं भाई, फोन में मैनेज कर रहे हैं, राउरकेला में कर पाते ना? नहीं जब आप इतना मैनेज करते हैं देवता लोग नहीं कर पाएंगे क्या? एक आध अपने एक्सटेंशन में देख करके वो यहाँ मैनेज कर लिए, किसको वहां कुछ मैनेज कर लिए, वेरी सिंपल थी, एक बड़ी बात। लेकिन मेन तो रहेंगे पुणे में हेडक्वार्टर में, तो बाकी कहाँ से क्या से मैनेज करते, फिर मेन वो देवता रूप में अपने देव रूप में रहते हैं, लेकिन वो रूप अलग अलग जगह पे भी देते हैं यूजिंग देमसेल्फ्स। ओके एक्सपांडिंग
देमसेल्फ्स। हरे कृष्ण महाराज।
ओके हरे कृष्ण टू यू।
इज मार्जिंग भक्ति अष्ट वैष्णव स्वामी महाराज की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। श्री श्री राधा कुंज भगवान की जाय, श्री श्री गौर निताय की।